मेरा नाम उस्मान खावर है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इन एआई सिस्टम्स को हम अपना मवाद देकर कैसे ट्रेन कर सकते हैं कि वो हमारा कॉन्टेक्स्ट बेहतर तरीके से समझें और हमें ऐसे नतीजे दें जो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हों। इस वीडियो में हम एआई को ट्रेन करने के लिए ऐसा मवाद देंगे और ऐसे टेक्निक्स इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे लिए बेहतर तरीके से वो परफॉर्म कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। याद रखें, एआई सिस्टम्स हमेशा पेशगोई का काम करते हैं और इनकी पेशगोई इस पर मबनी होती है जो इन्होंने देखा होता है। ये तालीम में एक मसला है। हम नहीं चाहते कि हमारे रियाजी के सबक इंटरनेट पर मौजूद मुख्तलिफ मालूमात पर मबनी हो। हम चाहते हैं कि ये हमारे कौमी निसाब पर मबनी हो और ऐसी मिसालें इस्तेमाल करें जो हमारे बच्चों के लिए मानी रखती हों। इसका मतलब ये है कि हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे जो एआई टूल्स हैं उन्हें हम ऐसी मालूमात दें जो हमारे निसाब और हमारी इंफॉर्मेशन उसमें शामिल कर सकें। और यहाँ पिछले चंद सालों में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है अपने मवाद को इस्तेमाल करने इन एआई टूल्स के अंदर के चार तरीके हैं। सबसे सादा तरीका, हर बार इसे एक प्रॉम्प्ट में शामिल करना अपने मवाद को, वहाँ से लेकर अपने डेटा के साथ मॉडल्स को मुकम्मल तौर पर दोबारा तरमीर करने तक। हर तरीके की अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हैं, यानी अपनी ताकतें और अपनी कमज़ोरियाँ। आज हम इन तरीकों का मुख्तसर जायज़ा पेश करेंगे और ये देखेंगे कि ये सारे तरीके कैसे काम करते हैं। अगर हम इन चार तरीकों की बात करें तो उनमें से पहला तरीका है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दूसरा तरीका है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जिसे हम मुख्तसरन रैग कहते हैं, और तीसरा तरीका है फाइन ट्यूनिंग, और आखिरी तौर पर चौथा तरीका है रीबिल्डिंग फाउंडेशनल मॉडल्स, यानी कि जो बुनियादी मॉडल्स हैं उनको शुरू से बनाना, यानी जितने भी बुनियादी मॉडल्स हैं उनको दोबारा तामीर करना। आइए इन चार तरीकों में हर एक को बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले जिसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आता है, अपनी मालूमात शामिल करने का सबसे आसान तरीका बराह रास्त है, बस इसे प्रॉम्प्ट में डाल देना, यानी अपना जितना भी हमारे पास मवाद है उसे हमने अपने प्रॉम्प्ट में डाल दिया। और जो हमारे पास ज़्यादा अगर हमारे पास मवाद है तो आजकल हम ऐसा भी कर सकते हैं कि 75 लाख अल्फाज हम एक साथ एक प्रॉम्प्ट के अंदर डाल दें। और जैसे कि एक इसमें तरीका ये है कि आप इससे सिर्फ एक लेसन प्लान मांग रहे हैं, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसे अपने पिछले तमाम हफ्तों के लेसन शेयर करते हैं और इसे बताते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरे लर्निंग गोल्स क्या हैं। तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, ख़ुद कोशिश करके देखें। सिर्फ ये एक कदम जिससे आप अपना कॉन्टेक्स्ट इसे देते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर, उससे इन तमाम एआई सिस्टम्स का जो मैयार है वो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। इन दो चीज़ों पर फ़र्क करें। जो पहला है, जो वन है, वो ये है कि आप इसे सिर्फ अपना एक लेसन प्लान मांगते हैं जो एआई सिस्टम है, और दूसरा ये है कि आप इससे लेसन प्लान मांगने से पहले अपने तमाम पिछले वीक के प्लान देते हैं और कहते हैं कि हमें ये वाला गोल अचीव करना है अपने लेसन प्लान से। तो इन दोनों में बहुत फ़र्क आएगा, ख़ुद कोशिश करके देखें। सिर्फ अपना तमाम कॉन्टेक्स्ट दे देने से इससे जो एआई सिस्टम के जो आउटपुट है उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है तो सादा, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़वाद हैं। तो हम जानते हैं कि अपने मवाद को प्रॉम्प्ट में शामिल करने से हमारे नतायज बेहतर हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने देखा। और इसका एक ऑटोमेटिक यानी कि खुदकार तरीका ये है कि हमें बार बार इसे अपना मवाद ना देना पड़े, और इसे हम आज इस सेक्शन में देखेंगे। इसमें होता यह है कि आप अपना तमाम मवाद एक डेटाबेस में डाल देते हैं, यानी कि आपका तमाम जो मुश्किल काम है वो आपका कंप्यूटर कर रहा होता है। वो आपसे आपका प्रॉम्प्ट लेगा, मवाद को डेटाबेस के अंदर तलाश करेगा। मिसाल के तौर पर सबक के जो प्लान हैं, सबक का जो मंसूबा है, और फिर सबसे मुतल्लिका चीज़ आपको रिट्रीव करके दे देगा। ये मालूमात फिर प्रॉम्प्ट में ऑगमेंट की जाती हैं और इससे पहले के जवाब जनरेट हो, यानी कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपके लिए हार्ड वर्क, आपके लिए मुश्किल काम आपका कंप्यूटर करेगा। आपसे वो आपका प्रॉम्प्ट लेगा, आपके मवाद को वो आपके डेटाबेस के अंदर तलाश करेगा। मिसाल के तौर पर सबक के जो आपने उसे मंसूबे दिए, और उसके बाद वो उससे मुतलिका चीज़ अपने डेटाबेस के अंदर ढूंढेगा, वहाँ से उसको रिट्रीव करेगा, और आपको जवाब देने से पहले पहले वो आपके रिस्पॉन्स के अंदर उसको ऑगमेंट कर देगा। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं रिट्रीव, ऑगमेंट और जनरेट, और ये बन जाता है हमारा एक रैग मॉडल। तो अभी जो हमने रैग मॉडल के बारे में सीखा, उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा हमें ये होता है कि हम अपने मवाद की एक बड़ी सी डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी AI एप्लीकेशन के अंदर, और हम बने बनाए जो LLM मॉडल्स होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप किसी भी वक्त अपने मवाद को बग़ैर किसी बड़े वसाइल के अपडेट कर सकते हैं अपनी डेटाबेस को चेंज करके। ये जो दोनों तरीके जिनके बारे में अभी हमने जाना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और रैग मॉडल्स, ये बुनियादी तौर पर LLMs को हमारे फ्राहम करदा मवाद की तफसीर के बाद उसको इस्तेमाल करते हैं, और उसको इस्तेमाल करके आपको एक ऐसा जवाब देते हैं जो आपके लिए कॉन्टेक्स्चुलाइज्ड यानी आपके मुतल्लिका हो। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट विंडोज़ होने के बावजूद भी इन तमाम मॉडल्स के अंदर एक लिमिटेशन ये होती है कि मवाद की गहराई और वसअत को वो उतनी अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं कर सकते। ये मसला इस वक्त बढ़ जाता है जब इन तमाम चैटबॉट्स को हम इतनी ज़्यादा चीज़ें दे चुके हों माजी के अंदर कि उन तमाम चीज़ों को उनके लिए एक गुफ्तगु के अंदर फिट करना मुश्किल हो जाए। और इसका नतीजा फिर ये होता है कि जो मालूमात इन LLMs को हम एक रैग मॉडल के तहत देते हैं वो कभी कभी नामुकम्मल या बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल हो सकती हैं, जिससे नुकसान हमारा ये होता है कि अगर हम चाहें कि हमें एक इनकी बहुत ज़्यादा गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए एक तमाम अपने दिए गए मवाद की, तो वो हमें नहीं मिल सकती। यहाँ फ़ाइन ट्यूनिंग काम आता है, जिसमें हम तमाम मालूमात जो हमने मॉडल को देनी होती हैं उसकी हम बेहतर तरीके से और बराह रास्त तरीके से तरबियत कर सकते हैं। फ़ाइन ट्यूनिंग आपको मखसूस कामों के लिए सिस्टम्स की तरबियत करने की इजाज़त देता है। मिसाल के तौर पर सिर्फ रियाजी के अगर देखा जाए, मज़ीद रियाजी की मिसालों को शेयर करके जब तक ये मॉडल बेहतर ना हो जाए हम लोग फ़ाइन ट्यूनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम जब तक उसको रियाजी की ज़्यादा से ज़्यादा मिसालें देते जाएंगे हमारा मॉडल उतना बेहतर होता जाएगा, तो इसे हम फ़ाइन ट्यूनिंग कहते हैं। अगर इसको हम समझने के लिए हम एक मिसाल का इस्तेमाल करें कॉग्निटिव साइकोलॉजी से, तो हम ये सोच सकते हैं कि जो फ़ाइन ट्यूनिंग है उसके असरात एक लॉन्ग टर्म याददाश्त के होते हैं, जबकि जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या रैग मॉडल्स जो हमने पहले देखे उनके जो असरात हैं वो शॉर्ट टर्म याददाश्त के हो सकते हैं। तो इसीलिए जो फ़ाइन ट्यूनिंग है उसका इस्तेमाल ज़्यादा गहरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं अपने बेहतर जवाबात हासिल करने के लिए। जैसे एक उस्ताद जो पढ़ाना या सिखाना सीखता है फिर एक मज़मून में महारत हासिल करता है, टूल्स इस आखिरी मील लर्निंग से वाकई फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी फ़ाइन ट्यूनिंग करके जो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और रैग मॉडल्स का इस्तेमाल करके हासिल नहीं कर सकते वो हम फ़ाइन ट्यूनिंग से कर सकते हैं। अपने मवाद को इन AI सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल करने का एक आखिरी तरीका ये है कि आप अपने मॉडल को मुकम्मल तौर पर दोबारा तामीर करें, यानी शुरू से। जबकि ये मुकम्मल कंट्रोल फ्राहम तो करता है कि क्या शामिल किया जाए, लेकिन ये एक बहुत महंगा और टाइम कंज्यूमिंग काम हो सकता है, ख़ास तौर पर बड़े मॉडल्स के लिए। ये तरीक़ाकार उन तंजीमों के लिए सबसे ज़्यादा अहम है जिनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं और बहुत ख़ास ज़रूरियात हैं जो मौजूदा मॉडल से पूरी नहीं हो सकती। अब हम अपनी डिस्कशन को अगर ख़त्म करें तो वो ये है कि इन तमाम AI सिस्टम्स के अंदर अपना मवाद शामिल करके हम इनके जो इस्तेमाल है एजुकेशनल सेटिंग्स के अंदर उसको बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। चाहे आप सादगी के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को चुनें, या आप स्केलेबिलिटी के लिए रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन को चुनें, या मखसूस कामों के लिए फ़ाइन ट्यूनिंग को चुनें, या हतमी कंट्रोल के लिए बुनियादी मॉडल्स को दोबारा से तामीर करें, हर तरीके के अपने फ़वाद और अपने नुकसानात हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हर काम सादगी से शुरू करना चाहिए। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत महदूद सरमायाकारी के अंदर रहकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छे नतीज पेश कर सकता है। याद रखें, कामयाबी का जो रास्ता है वो ये है कि आप इस टेक्नोलॉजी को ऐसे इस्तेमाल करें कि आपके काम को ये बेहतर बना सके। जितना आप अपनी ज़रूरत के बारे में सोच समझ कर गौर कर सकते हैं उतनी इन चीज़ों की, इन AI सिस्टम्स की मफादियत आपके लिए बढ़ सकती है। शुक्रिया।